अध्याय 12 वाकाटक वंश। उदयकाल। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिणी भारत में अनेक छोटे बड़े राजवंशों का उदय हुआ। इनमें वाकाटक वंश सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस वंश का उल्लेख करते हुए दुर्बिया महोदय कहते हैं कि ईसा की तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक दक्षिणी भारत में जिन राजवंशों का उदय हुआ उसमें वाकाटक वंश सर्वश्रेष्ठ था और उसके कार्यों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस वंश का उदय किस समय हुआ इस प्रश्न पर मतभेद है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वाकाटक नरेशों ने अपने अभिलेखों में किसी विशेष संवत का प्रयोग नहीं किया है वरन अपने अपने राज्य आरंभ के वर्षों का उल्लेख किया है। डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रस्तुत किया था कि वाकाटकों ने 250 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेरी संवत की स्थापना की थी, परंतु आज अधिकांश विद्वान इस मत को नहीं मानते क्योंकि यदि संवत की स्थापना वाकाटकों ने की होती तो वे अपने अभिलेखों में इसका प्रयोग करते, परंतु उनके किसी भी अभिलेख में इस संवत का प्रयोग नहीं मिलता। फिर भी प्रथम वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति का शासन काल 250 ईस्वी के आसपास जा सकता है क्योंकि इसी समय सातवाहन साम्राज्य का पतन हुआ था। सर्वप्रथम पूना ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इस प्रकार रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। रुद्रसेन का शासन अल्पकालीन था, संभवतः उसने 384 ईस्वी से 390 ईस्वी तक राज्य किया। उसके पिता पृथ्वीसेन का शासन दीर्घकालीन था क्योंकि उसके अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। अनुमानतः उसने 360 ईस्वी से 385 ईस्वी तक राज्य किया। एक अभिलेख से प्रकट होता है कि पृथ्वीसेन प्रथम के सिंहासनारोहण के समय तक वाकाटक राज्य की स्थापना के 100 वर्ष हो चुके थे, अतः यह स्थापना 255 से 260 ईस्वी के आसपास हुई होगी। मूल निवास स्थान। वाकाटक के मूल निवास स्थान का प्रश्न भी बड़ा विवादग्रस्त है। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार वे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित चीरगांव के पूर्व में भूतपूर्व ओरछा राज्य के बागाट नामक ग्राम के मूल निवासी थे, इसी से उनके वंश का नाम वाकाटक पड़ा। परंतु डॉक्टर जायसवाल के मत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वाकाटक वंश का कोई भी शिलालेख उत्तरी भारत में नहीं मिला है। प्रवरसेन द्वितीय के इंदौर ताम्रपत्र के अतिरिक्त वाकाटकों का कोई भी अन्य ताम्रपत्र भी उत्तरी भारत में नहीं मिला है। यह ताम्रपत्र भी संभवतः खानदेश से ही उत्तरी भारत में पहुंचा होगा क्योंकि इसमें उल्लेखित ग्राम खानदेश में स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि पुराण वाकाटक नरेशों का संबंध भूतपूर्व पन्ना राज्य की किलकिला नदी से स्थापित करते हैं, परंतु वास्तव में पुराण किलकिला प्रदेश का नहीं वरन किलकिल राजाओं के उल्लेख करते हैं जिनके पश्चात विंध्य शक्ति का उदय हुआ था। आंध्र प्रदेश में अमरावती नामक ग्राम में एक स्तंभ लेख मिला है। इसमें वाकाटक नामक एक गृहपति का उल्लेख है जो अपनी दो पत्नियों के साथ बौद्ध तीर्थ स्थान अमरावती गया था और वहाँ उसने कुछ दान भी किए थे। डॉक्टर मीराशि के मतानुसार यह वाकाटक अमरावती के समीप ही किसी स्थान का निवासी होगा, परंतु इसमें वाकाटक को बौद्ध बताया गया है जबकि वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। पुराण वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा और पूरिका का शासक बताते हैं, अतः संभव है कि वाकाटक वंश पश्चिमी मध्य प्रदेश अथवा बरार का मूल निवासी रहा हो। जाति। वाकाटक वंश ब्राह्मण वंश था। उसके प्रथम नरेश विंध्य शक्ति को अजंता अभिलेख में द्विज कहा गया है। पुनः वाकाटक अभिलेखों में वाकाटकों का गोत्र विष्णु वृद्ध बताया गया है। यह ब्राह्मण गोत्र था। विंध्य शक्ति या वाकाटक वंश का संस्थापक था। पुराणों में इसका वर्णन है। अजंता की 16वीं गुहा के एक अभिलेख में इसे द्विज और वाकाटक वंश केतु कहा गया है। इस लेख के अनुसार विंध्य शक्ति ने अपने युद्धों में विजय प्राप्त की थी। संभवतः वह अथवा उसके पूर्वज प्रारंभ में सातवाहनों के अधीन सामंत शासक थे। कालांतर में विंध्य शक्ति ने अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित की। संभवतः विंध्य शक्ति उसका नाम न था। विंध्य प्रदेश में अपनी सत्ता का विस्तार करने के पश्चात उसने यह विरुद्ध धारण किया था। पुराणों में विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन की दो राजधानियों पूरिका और चनका नाम के नाम मिलते हैं। इनमें से एक विंध्य शक्ति की राजधानी रही होगी। कुछ विद्वान विंध्य शक्ति को स्वतंत्र राजा नहीं मानते उसके दो कारण हैं। पहला, वाकाटक के ताम्रपत्र में उसकी वंशावली प्रवरसेन से प्रारंभ हुई और उसमें विंध्यशक्ति का नाम नहीं मिलता। दूसरा, अजंता के उपयुक्त अभिलेख में विंध्यशक्ति के नाम के साथ किसी उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु ये आपत्तियां निर्बल हैं। पहला, स्वतंत्र होते हुए भी विंध्यशक्ति का एक छोटा राजा था। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना वस्तुतः उसके पुत्र प्रवरसेन ने की थी। पुत्र की विपुल कीर्ति के समक्ष पिता की कीर्ति विस्मित हो गई। यही कारण है कि वाकाटक ताम्रपत्रों में वंशावली का प्रारंभ प्रवरसेन से मिलता है। दूसरा, अजंता विलेख में विंध्यशक्ति ही नहीं वरन उसके उत्तराधिकारियों के लिए भी उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि यह लेख पद्य में है और इसमें उपाधि प्रयोग कठिन अथवा अनावश्यक समझा गया। पुराणों में उल्लेखित 96 वर्ष उसके शासन काल के वर्ष नहीं हो सकते, वे उसकी आयु को सूचित करते हैं। इसने कदाचित 255 ईस्वी से 275 ईस्वी तक राज्य किया। प्रवरसेन प्रथम विंध्यशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम सिंहासनासीन हुआ। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है। यह वाकाटक वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। उसने अपने वंश में एकमात्र इसी ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसके साम्राज्य के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है। पहला, पुराणों से प्रकट होता है कि विदिशा उसके अधीन था और वहाँ पूरिका नरेश की राजधानी थी। डॉक्टर मीरासी का कथन है कि उस समय पूरिका में विदिशा के नागवंशी राजा का दोहित्र शिशुक राज्य कर रहा था। प्रवरसेन ने इसी शिशुक को पराजित कर पुरिका पर अधिकार किया था, परंतु अपने विद्वानों के मतानुसार पुरिका विंध्यशक्ति के समय से ही वाकाटक राज्य में थी। दूसरा, प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। कदाचित यही कारण है कि वहाँ के शक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय और यशोदामन द्वितीय के एकमात्र छोटी उपाधि छत्रप धारण की थी। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यशोदामन द्वितीय के पश्चात 332 ईस्वी से लेकर 348 ईस्वी तक शकों की मुद्राएं प्राप्त नहीं होती, परंतु डॉक्टर मीराशी इस मत को अस्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि शकों की स्वतंत्रता का अपहरण प्रवरसेन ने नहीं वरन मध्य प्रदेश के एक ग्रंथ नरेश श्रीधर वर्मन ने की थी। तीसरा, मध्य प्रदेश के बघेल खंड में स्थित नचना तथा गंज ग्रामों में वाकाटक नरेश पृथ्वी शेर के मांडलिक व्याघ्रदेव के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अनेक विद्वान ने इस पृथ्वी शेर को पृथ्वी शेर प्रथम माना है, परंतु बघेल खंड को न तो पृथ्वी शेर प्रथम ने जीता था और न उसके पिता रुद्रसेन प्रथम ने। अतः अनुमान किया जा सकता है कि बघेल खंड की विजय प्रवरसेन प्रथम ने ही की थी। चौथा, अभिलेखों से अनुमान किया जा सकता है कि बालाघाट से दक्षिणी बरार और उत्तरी पश्चिमी हैदराबाद तक का प्रदेश प्रवरसेन के अधीन था। उत्तर कुंतल के कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर निश्चित रूप से उसके अधीन प्रतीत होते हैं। दक्षिणी कौशल, कलिंग और आंध्र में इस समय कोई शक्तिशाली राजा न था। इस अनुमान किया जा सकता है कि इन राज्यों को भी प्रवरसेन ने अपने आधिपत्य में ले लिया होगा। पांचवा, श्री शैल स्थल महात्यम नामक ग्रंथ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री चंद्रावती का उल्लेख करता है। वह कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैल में मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करने जाया करती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रावती प्रभावती गुप्ता थी। यदि यह समीकरण ठीक है तो श्री शैल प्रदेश प्रभावती गुप्ता के प्रति रुद्रसेन पति रुद्रसेन द्वितीय के राज्य में सम्मिलित होगा। इसे रुद्रसेन द्वितीय के पूर्व प्रवरसेन ने जीता होगा। डॉ अल्टेकर ने प्रवरसेन के साम्राज्य के विषय में लिखा है कि इसके अंतर्गत उत्तरी महाराष्ट्र, बरार नर्मदा नदी के दक्षिण में मध्य प्रदेश और भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का अधिकांश भाग आते थे। इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव क्षेत्र में दक्षिणी कौशल, बघेलखंड, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ थे। डॉक्टर जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया था कि प्रवरसेन ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करके चंडसेन अथवा चंद्रगुप्त प्रथम को पराजित किया था तथा उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यही नहीं, प्रवरसेन ने कुषाणों को भी पराजित करके पंजाब से निकाला था। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार उत्तरी भारत की बनावट की प्रवरसेन की मुद्रा भी मिली है। इस पर प्रवरसेनस्य लिखा हुआ है, परंतु आज इस मत को कोई भी स्वीकार नहीं करता। कौमुदी महोत्सव के चंडसेन का समीकरण चंद्रगुप्त के साथ नहीं किया जा सकता। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि पंजाब अथवा का उत्तरी भारत से प्रवरसेन का कोई संबंध था। डॉक्टर अल्टेकर का मत है कि जिस मुद्रा को डॉक्टर जायसवाल प्रवरसेन की मुद्रा बताते हैं वह वास्तव में वीरसेन की मुद्रा है। यज्ञ प्रवरसेन प्रथम वैदिक धर्म को मानने वाला था। उसने चार अश्वमेध यज्ञ तथा अग्निष्टोम अग्नि अत्याग्निष्टोम उकथ्या षोडशी वाजपेयी अतिरात्र और अप्तर्याम नामक वैदिक यज्ञ किए। इन अवसरों पर उसने बहुमूल्य दक्षिणाएं दी। वाजपेयी यज्ञ के पश्चात उसने सम्राट की उपाधि धारण की। वाशिम ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि उसने धर्म महाराज की उपाधि भी धारण की थी। नागों से संबंध। इस समय भाषी वंश में भवनाग नामक एक राजा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली था। उसकी तांबे की मुद्राएं पद्मावती में मिली हैं। प्रवरसेन ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह इसी भवनाग की पुत्री के साथ किया। इस विवाह का उल्लेख वाकाटकों के अनेक ताम्रपत्रों में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागों ने वाकाटकों के उत्कर्ष में बड़ी सहायता दी थी। घटोत्कच गुहालेख में प्रवरसेन के मंत्री देव का उल्लेख है। यह मंत्री विद्वान और धर्मात्मा था। इसने वैदिक धर्म की स्थापना में बड़ा योग दिया। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने 60 वर्ष तक राज्य किया। इसका शासनकाल संभवतः 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना जाता है। पुराणों का कथन है कि प्रवीर के चार पुत्र थे। उसकी मृत्यु के पश्चात ये सभी राजा बने। उसके एक पुत्र प्रवरसेन का नाम वाशिम ताम्रपत्र और अजंता की 16वीं गुहालेख में मिलता है। शेष दो पुत्रों के नाम ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात वाकाटक साम्राज्य का चारों पुत्रों के बीच विभाजन हो गया। प्रवरसेन के ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र के लिए किसी भी वाकाटक अभिलेख में एक स्वतंत्र राजा के रूप में वर्णन नहीं मिलता। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उसकी मृत्यु अपने पिता के जीवन काल में ही हो गई थी। अतः गौतमी पुत्र रुद्रसेन प्रथम ने साम्राज्य का एक भाग उत्तरी विदर्भ पाया। उसकी राजधानी नंदीवर्धन थी। प्रवरसेन के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने दक्षिणी विदर्भ पाया। इसकी राजधानी वत्सगुल्म थी। डॉक्टर मीराशी के अनुसार तीसरे पुत्र का राज्य उत्तरी कुंतल में और चौथे पुत्र का राज्य दक्षिणी कौशल में था। उत्तरी कौशल की शाखा कांत मानांक नामक राष्ट्रकूट नरेश ने किया। दक्षिणी कौशल की वाकाटक शाखा का अंत संभवतः नलवंश के उदय के कारण हुआ। प्रथम दो शाखाएं समांतर रूप से बहुत दिनों तक चलती रहीं। इस साम्राज्य विभाजन से वाकाटक राज्य की शक्ति को बड़ा धक्का लगा और संपूर्ण भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की दौड़ में गुप्तों से पीछे रह गया। डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया था कि प्रवरसेन प्रथम के एक पुत्र ने दक्षिणी भारत में पल्लव वंश की स्थापना की थी, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम लगभग 335 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ। इसने कदाचित 360 वर्ष तक शासन किया। वाकाटक अभिलेख में बार बार यह बात कही गई है कि रुद्रसेन प्रथम नाग नरेश भगवान का दोहित्र था। संभवतः भगवान ने उसे किसी विशेष संकट में महत्वपूर्ण सहायता दी होगी। डॉक्टर अल्टेकर का अनुमान है कि रुद्रसेन के तीन चाचा थे। संभव है कि उन्होंने अनुभवहीन रुद्रसेन प्रथम के राज्य को हड़पने की चेष्टा की हो और रुद्रसेन ने अपने चाचा की सहायता से उन्हें पराजित किया हो। हो सकता है कि उनमें से दो चाचा युद्ध में मारे गए हों, क्योंकि उनके नाम इतिहास में नहीं मिलते। अपने इस मत की पुष्टि में डॉक्टर अल्टेकर यह कहते हैं कि भवनाग के प्रभाव में ही रुद्रसेन ने अपने वंश के वैश्व धर्म का परित्याग कर अपने नाना के शैव धर्म को अंगीकार कर लिया था। वाकाटक लेखों से प्रकट होता है कि रुद्रसेन महाभैरव का उपासक अर्थात शैव था। कुछ विद्वानों ने रुद्रसेन प्रथम वाकाटक का समीकरण समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित रुद्रदेव के साथ किया था, परंतु यह मत असंगत है। रुद्रदेव आर्यावर्त का राजा था, जबकि रुद्रसेन वाकाटक दक्षिणापथ का। रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन को पराजित किया था अथवा उसे अपने अधीन कर लिया था। वाकाटक लेखों में गुप्तों की प्रभुसत्ता का वर्णन नहीं मिलता। उनमें गुप्त संवत का भी प्रयोग नहीं मिलता। यह सत्य है कि रुद्रसेन को सदैव अभिलेखों में राजन अथवा महाराज कहा गया है, परंतु इससे उसकी अधीनता सिद्ध नहीं होती। दक्षिणी भारत में स्वतंत्र शासक भी महाराज की उपाधि धारण करते थे। फिर भी डॉक्टर मीरासी का विश्वास है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणी भारत के अभियान से वाकाटकों की शक्ति को बड़ा धक्का लगा। पहले महाकांतर कुराल और पिष्टिपुर के राजा वाकाटकों के अधीन थे। अब उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अनेक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि इनमें से कोई भी वाकाटकों के अधीन नहीं था। डॉक्टर टेकर का मत है कि रुद्रसेन प्रथम ने शासन काल में उज्जैन के शकों ने पुनः अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। ये शक प्रवरसेन प्रथम के अधीन थे, परंतु अब उनके राजा रुद्रदामन द्वितीय को हम माँ छत्रप की उपाधि धारण किए हुए पाते हैं। यह एक स्वतंत्र राजा की उपाधि थी। पृथ्वी शेर प्रथम रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी शेर प्रथम लगभग 360 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसने लगभग 385 ईस्वी तक राज्य किया। इस समय तक वाकाटक राज्य की स्थापना के 100 वर्ष हो चुके थे। वाकाटक लेखों में पृथ्वी शेर प्रथम के चारित्रिक गुणों की प्रशंसा की गई है। उसे धर्म विजयी बताया गया है तथा उसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है उसका काल शांतिपूर्ण था और उसने साम्राज्य विस्तार का प्रयत्न नहीं किया। मध्य प्रदेश में नचना और गंज नामक ग्रामों में महाराज पृथ्वीशेण के सामंत व्याघ्रदेव के दो शिलालेख मिले हैं। यह पृथ्वीशेण प्रथम ही था। पृथ्वीशेण के शासन की सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण घटना उसका गुप्तवंश के साथ विवाह संबंध स्थापित करना था। इस समय गुप्तवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। वह गुजरात और काठियावाड़ के शकों का दमन करना चाहता था। वाकाटक राज्य शक राज्य का पड़ोसी था, अतः वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पर्याप्त सहायता कर सकता था। इसी उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीशेण के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ करने का प्रस्ताव रखा। पृथ्वीशेण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस विवाह के दोनों राजवंश परम मित्र बन गए। वाकाटकों ने शकों को पराजित करने में चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता की थी। वाकाटक लेखों में पृथ्वीशेण को भी सैव कहा गया है। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीशेण प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय लगभग 385 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ। उसने संभवतः 390 तक राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा प्रभावती गुप्ता के प्रभाव में उसने अपने प्रत्येक धर्म सैव धर्म का परित्याग कर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। रुद्रसेन द्वितीय लगभग 5 वर्ष के अल्प शासन काल के पश्चात ही मर गया। उसकी मृत्यु के समय उसके पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन क्रमशः लगभग 5 और 2 वर्ष के थे। प्रभावती गुप्ता का शासन काल। इस परिस्थिति में प्रभावती गुप्ता ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। इसके शासनकाल के 2 ताम्रपत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र। प्रथम ताम्रपत्र दिवाकर सेन के शासनकाल के 13वें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया है। इसी ताम्रपत्र में पहली बार ज्ञात हुआ है कि प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यह आधार मिल जाने पर वाकाटकों के काल निर्धारण का कार्य सुगम हो गया। रिद्धपुर ताम्रपत्र में पूना ताम्रपत्र के अनेक वर्ष पश्चात उत्कीर्ण कराया गया था। इन दोनों ताम्रपत्रों में वाकाटक वंशावली के स्थान पर गुप्त वंशावली मिलती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रभावती गुप्ता के शासन काल में वाकाटक राज्य गुप्त वंश के प्रभाव में आ गया था। संभवतः गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विधवा पुत्री की सहायता के लिए अपने पदाधिकारी वाकाटक राज्य में भेजे थे। उन्हीं ने इन ताम्रपत्रों को लिखा और उनमें गुप्त वंशावली का उल्लेख किया। यह अनुमान किया जाता है कि अल्पवयस्क राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को वाकाटक राज्य में भेजा था। ऐसी भी जनश्रुति है कि दामोदर सेन द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य को कालिदास ने संशोधित किया था। डॉक्टर मीरासी का मत है कि वाकाटक प्रदेश विदर्भ में रहते हुए भी कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत में उल्लिखित रामगिरी वाकाटक राजधानी नंदीवर्धन के निकट था। प्रभावती गुप्ता के शासन काल में ही चंद्रगुप्त ने शक राज्य पर आक्रमण किया। यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता को पूरी सहायता दी होगी। प्रभावती गुप्ता के बड़े पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु अल्पावस्था में ही हो गई, अतः उसका छोटा भाई दामोदर सेन वयस्क होने पर प्रवरसेन द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। प्रभावती गुप्ता वैष्णव थी। वो अपने राजधानी नंदीवर्धन के समीपस्थ रामगिरी पर प्रतिष्ठित भगवान रामचंद्र की पादुकाओं की भक्त थी। प्रवरसेन द्वितीय। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभावती गुप्ता के 3 पुत्र थे, दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवरसेन द्वितीय। परंतु यह मत असंगत है, क्योंकि यदि दामोदर गुप्त और प्रवरसेन द्वितीय भिन्न भिन्न व्यक्ति होते तो प्रवरसेन द्वितीय की भांति दामोदर सेन का भी प्रशंसा की कोई स्वतंत्र लेख मिलता, परंतु ऐसा नहीं है। पुनश्च रिद्धपुर ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता को वाकाटकानामा महाराज श्री दामोदर सेन प्रवरसेन जननी कहा गया है। यहाँ यदि दामोदर सेन और प्रवरसेन दो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते तो दामोदर सेन की भांति प्रवरसेन के नाम के साथ भी महाराज की उपाधि जुड़ी होती। इस प्रकार यही मानना अधिक तर्कपूर्ण प्रतीत होता है कि दामोदर सेन और प्रवर सेन एक ही व्यक्ति थे। राजा होने पर दामोदर सेन ने अपने महान पूर्वज प्रवर सेन का नाम धारण किया। इसने संभवतः यह 410 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसका पांडुरणा ताम्रपत्र इसके शासन काल के 29वें वर्ष का है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। इसकी मृत्यु 440 ईस्वी के आसपास हुई होगी। अभी तक वाकाटक राज्य की राजधानी नंदीवर्धन थी। प्रवरसेन द्वितीय ने अपने नाम से प्रवरपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने भगवान रामचंद्र के एक मंदिर का निर्माण कराया। प्रवरसेन एक विद्वान एवं विद्या प्रेमी था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। जनश्रुति के अनुसार इसका संशोधन कालिदास ने किया था। प्रवरसेन ने लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र भी उत्कीर्ण कराए। इतने ताम्रपत्र प्राचीन भारत के किसी भी राजा ने नहीं तैयार कराए। इनसे उसकी दानशीलता का प्रमाण मिलता है। प्रवरसेन शैव धर्मावलंबी था। उसे जौम ताम्रपत्र में परम माहेश्वर कहा गया है, परंतु वह दूसरे धर्मों के प्रति भी श्रद्धावान था। उसने स्वयं राम कथा पर आधारित सेतुबंध काव्य की रचना की थी तथा प्रवरपुर में राम मंदिर बनवाया था। प्रवरसेन द्वितीय ने कुंतल राज्य में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह वहाँ की राजपुत्री अज्जितम्म हारिका के साथ कर दिया था। यह स्पष्ट नहीं है कि कुंतल में उस समय किस वंश का राज्य था। डॉक्टर अल्टेकर का मत है कि वहाँ कदम्ब वंश का राज्य था और अज्जितम्ब हारिका इसी वंश के राजा काकुस्थावर्मन की पुत्री थी। इसके विरुद्ध प्रोफेसर मीराशी का मत है कि इस समय कुंतल में राष्ट्रकूट वंशी अविधेय राज्य कर रहा था। अज्जितम्ब हारिका इसी की पुत्री थी। नरेंद्र सेन प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नरेंद्र सेन वाकाटक राज्य का स्वामी बना। इसने लगभग 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक राज्य किया। बालाघाट ताम्रपत्र का कथन है कि नरेंद्र सेन ने अपनी शारीरिक गुणों के कारण रालक्ष्मी हस्तगत की। इस आधार पर डॉक्टर कोलहनम ने यह मत प्रतिपादित किया था कि प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और नरेंद्र सेन ने अपने बड़े भाई को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया। इस मत की पुष्टि में कुछ विद्वान यह कहते हैं कि अजंता के 16वीं गुहा के लेख में इस बड़े भाई का नाम था। अभाग्यवश गुहा लेख का वह अंश नष्ट हो गया, परंतु स्पष्ट प्रमाण के अभाव में उत्तराधिकार युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। बालाघाट ताम्रपत्र का कथन है कि कौशला मेकला और मालव देशों के राजा उसकी आज्ञा मानते थे। मालवा तत्कालीन गुप्त नरेश स्कंदगुप्त के अधीन था। संभव है कि वहाँ के किसी सामंत ने गुप्तों के विरुद्ध नरेंद्र सेन की अधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु अंत में मालवा स्कंदगुप्त के ही अधिकार में रहा। मेकला अमरकटक प्रदेश था। डॉक्टर मीरासी का मत है कि यहाँ पांडव वंश गुप्तों की अधीनता में राज्य कर रहा था। इसके एक राजा भरतबल का उल्लेख बहमनी ताम्रपत्र में हुआ है। संभव है कि इसने गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह कर नरेंद्र सेन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया हो। कौशला का तात्पर्य दक्षिण कौशल से है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश था। प्रोफेसर मीरासी के कथनानुसार यहाँ भीमसेन प्रथम नामक नरेश ने नरेंद्र सेन का प्रभुत्व स्वीकार किया था। नलवंश के तीन राजाओं वरा भवदत्त वर्मा और अर्थपति के स्वर्ण मुद्राएं मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के एरडेगा नामक ग्राम में प्राप्त हुई है। भवदत्त वर्मा के रिद्धपुर ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि उसने वाकाटक राज्य के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के पश्चात भवदत्त वर्मा ने प्रयाग यात्रा की थी, परंतु नरेंद्र सेन ने संकट काल में अतीव धैर्य और शौर्य का परिचय दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भवदत्त वर्मा अपनी विजय के पश्चात बहुत दिनों तक जीवित न रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अर्थपति राजा हुआ। नरेंद्र सेन ने उस पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। यही नहीं, उसने नलों की राजधानी पुष्करी को नष्ट कर दिया। आंध्र प्रदेश के पोंडागढ़ नामक स्थान पर एक शिलालेख मिला है। इसमें किसी शत्रु द्वारा पुष्करी के नष्ट किए जाने का उल्लेख है। रोटर टेकर का मत है कि यह शत्रु नरेंद्र सेन था, परंतु प्रोफेसर मीरासी ने इसे नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वी शेर द्वितीय मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में अर्थपति मारा गया और उसके पश्चात उसका भाई स्कंद वर्मा नल राज्य का शासक बना। उपयुक्त पौंडागढ़ शिलालेख इसी स्कंद वर्मा का है। टोटल टेकर का अनुमान है कि संकट काल में नरेंद्र सेन को अपनी रानी के कदम्ब वंश से सहायता मिली होगी। यही कारण है कि नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी शेण द्वितीय ने अपने वंश वृक्ष में कदम्ब वंश का उल्लेख किया है। पृथ्वी शेण द्वितीय यह नरेंद्र सेन का पुत्र था। इसने लगभग 460 ईस्वी से 480 ईस्वी तक राज्य किया। भालाघाट अभिलेख में उसे दो बार द्विमग्न वंश का उद्धारकर्ता कहा गया है, परंतु इस अभिलेख में यह प्रकट नहीं होता कि शत्रुओं के कारण वाकाटक वंश पर दो बार आपत्ति आई थी। संभवतः एक बार की आपत्ति का कारण नल वंश रहा हो। संभवतः पृथ्वी शेण द्वितीय ने राजकुमार की भांति नलों को पराजित करने में अपने पिता की सहायता की थी। यह भी संभव है कि नल वाकाटक संघर्ष पृथ्वी शेण द्वितीय के शासन काल में ही हुआ हो। नोटाल टेकर के मतानुसार दूसरी बार की आपत्ति का कारण दक्षिणी गुजरात में त्रैकूट वंशी राजा द्रहसेन का उदय था। इस राजा ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। संभव है कि इसने अपने पड़ोसी वाकाटकों को पराजित किया हो, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शेण द्वितीय पुनः अपने वंश की स्थापित करने में सफल हुआ। बालाघाट अभिलेख में पृथ्वी शेण द्वितीय को परम भागवत अर्थात विष्णु भगवान का उपासक कहा गया है। इस राजा के पश्चात वाकाटकों की प्रमुख शाखा वत्सगुल्म शाखा में मिल गई। वत्सगुल्म शाखा सर्वसेन वाकाटकों की वत्सगुल्म शाखा की स्थापना प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन ने की थी। इसने संभवतः 330 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। डॉक्टर टेकर का मत है कि इसने प्रमुख शाखा के अपने भतीजे रुद्रसेन द्वितीय से उसका राज्य छीनने की चेष्टा की थी, परंतु भवनाग ने अपने दौहित्र रुद्रसेन की रक्षा की। घटोत्कच गुहालेख रवि नामक मंत्री का उल्लेख है। इसने सर्वसेन के उत्कर्ष में बड़ा योग दिया। अजंता अभिलेख में सर्वसेन की प्रशंसा की गई है। विंध्यसेन सर्वसेन के पश्चात उसका पुत्र स्यासनासीन हुआ। वाशिम ताम्रपत्र में इसे विंध्य शक्ति द्वितीय कहा गया है। इसने लगभग 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक शासन किया। अजंता लेख से प्रकट होता है कि इसने कुंतल नरेश को पराजित किया था। प्रोफेसर मीरासी के मतानुसार इस समय कुंतल में राष्ट्रकूट वंशी मानांक का राज्य था। विंध्यसेन और मानांक दोनों में शत्रुता थी। विंध्यसेन ने अपने शासनकाल में 37वें वर्ष वाशिम ताम्रपत्र उत्कीर्ण कराया था। इस लेख का एक भाग संस्कृत में है और दूसरा भाग प्राकृत में। इससे प्रकट होता है कि धीरे धीरे संस्कृत की मान्यता बढ़ रही थी। घटोत्कच गुहालेख में वर्णित प्रवर इसका मंत्री था। नोटाल टेकर के मतानुसार इसके राज्य में दक्षिणी बरार उत्तरी हैदराबाद तथा नगर नासिक पूना और सतारा के प्रदेश सम्मिलित थे। इसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। कदाचित वाकाटक की प्रमुख शाखा के राजा पृथ्वीसेन प्रथम के साथ उसके संबंध अच्छे थे। प्रवरसेन द्वितीय विंध्यसेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय सिंहासनासीन हुआ। इसने लगभग 400 ईस्वी से 415 ईस्वी तक राज्य किया। अजंता लेख में इसकी प्रशंसा की गई है, परंतु इसके शासन काल की किसी विशेष घटना का पता नहीं चलता। घटोत्कच गुहालेख में उल्लिखित श्री राम इसका मंत्री था। उत्तराधिकारी अजंता लेख में प्रवरसेन द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम नष्ट हो गया है। इसकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है। डॉक्टर टेकर का अनुमान है कि उसकी अल्पावस्था के कारण वाकाटक वंश की मुख्य शाखा के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने उसके संरक्षक के रूप में वत्सगुल्म शाखा का भी शासन चलाया होगा। जब यह अल्पवयस्क राजा बड़ा हुआ तो उसने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। अजंता लेख में इसके शासन की प्रशंसा की गई है। संभव है कि इसने नल आक्रमण के विरुद्ध नरेंद्र सेन को सहायता दी हो। इसने लगभग 455 ईस्वी तक राज्य किया। घटोत्कच गुहालेख से प्रकट होता है कि इसके मंत्री का नाम कीर्ति था। देवसेन इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र देवसेन सिंहासनासीन हुआ। इसने लगभग 455 ईस्वी से 475 ईस्वी तक राज्य किया। इसका एक अपूर्ण ताम्रपत्र मिला है जो लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे अपने मंत्री हस्तिभोज से बड़ी सहायता मिली। अजंता गुहालेख और घटोत्कच गुहालेख दोनों में इस मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। हरिषेण लगभग 475 ईस्वी में देवसेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिषेण सिंहासन पर बैठा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसके समय वाकाटकों की दोनों शाखाएं एक में मिल गई। हरिषेण वत्सगुल्म शाखा के अतिरिक्त वाकाटकों की प्रमुख शाखा का भी राजा बना। हरिषेण बड़ा पराक्रमी पराक्रमी राजा सिद्धुआ अजंता लेख से प्रकट होता है कि इसके अधीन त्रैकुट, लाट, अवंती, कौशल, कलिंग, आंध्र प्रदेश और कुंतल के प्रदेश थे। लगभग 495 ईस्वी में धरसेन के मरने के पश्चात हरिसेन ने त्रैकुटक राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया होगा। अवंती में गुप्त वंश की अधीनता में वर्मन वंश राज्य कर रहा था। गुप्त वंश के निर्बल होने पर वर्मन वंश ने हरिसेन की अधीनता स्वीकार कर ली होगी। दक्षिणी कौशल के नलवंश ने भी हरिसेन को अपना अधिपति मान लिया होगा। डॉक्टर मीरासी के मतानुसार हरिसेन ने आंध्र प्रदेश के सालंकायन वंश के हाथ से राज्य छीन कर विष्णुकुंडी वंश के गोविंद धर्मा को दे दिया था। गोविंद धर्मा के पुत्र माधव धर्मा ने संभवतः हरिसेन की पुत्री के साथ विवाह किया था। अजंता की 17वीं गुहा लेख से प्रकट होता है कि ऋषिक में हरिसेन का एक सामंत शासक राज्य कर रहा था। वरादेव हरिसेन का मंत्री था। अपने घटोत्कच गुहा लेख में इसने अपना वंश वत्त दिया। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसकी मृत्यु 510 ईस्वी के आसपास हुई। उस समय तक वाकाटक राज्य अत्यंत विशाल हो गया था। इतने विशाल राज्य पर सम्राट प्रवरसेन ने भी शासन न किया था। पतन वाकाटक राज्य अनेक राजवंशों के उदय के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया। मालवा में यशोधर्मा का उदय हुआ। इसके मंदसौर अभिलेख में लिखा हुआ है कि जिन राज्यों पर गुप्तों और हूणों का भी शासन नहीं था वे यशोधर्मा के अधिकार में थे। संभवतः ये प्रदेश वाकाटक राज्य के कुछ भाग थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पांडव वंशी तीवरदेव का उदय हुआ। डॉक्टर मीराशी का मत है कि विदर्भ में कलचुरी नरेश कृष्णराज ने अपनी सत्ता स्थापित की। कर्नाटक में कदम्बों और बस्तर में नलों ने अपना अधिकार स्थापित किया, परंतु शीघ्र ही कर्नाटक में चालुक्य वंश का उदय हुआ। इसने शीघ्र अपने सभी पड़ोसी प्रतिद्वंदियों को हराकर एक साम्राज्य की स्थापना की।